आज है 28 जनवरी दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। ईरान और फ्रांस के बीच हुए कई व्यापारिक समझौते। केरल में कोर्ट ने दिए मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ सोलर घोटाले में FIR दर्ज करने के आदेश।
My firm opinion is that Chief Minister doesn't have any moral standing to continue with his observation of the vigilance court.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटते हुए संजय मिश्रा को बनाया उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन जारी, क्यों असमंजस में है PDP?
वो सोच रही है कि हुकूमत लेती है तो क्या वो डिलीवर कर सकेंगी, हुकूमत नहीं लेती है तो क्या वो यहाँ पे अगर नए चुनाव होते हैं तो क्या पार्टी उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकती है। ये एक मेन वजह है, रीजन है जो यहाँ पे हुकूमत साजी अभी नहीं हो रही है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटने के बाद नए सिरे से व्यापारिक संबंध शुरू करने के लिए यूरोप की यात्रा पर गए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का फ्रांस में भव्य स्वागत किया गया। उम्मीद है कि फ्रांस में रूहानी एयरबस कंपनी के 100 से ज्यादा विमानों की खरीद के समझौते की घोषणा कर सकते हैं। ईरान और फ्रांस की कार कंपनी पोजो के बीच भी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस समझौते के बाद फ्रांस की कार कंपनी पोजो ईरान में गाड़ियों का निर्माण कर सकेगी। हसन रूहानी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला से भी आज मुलाकात करने वाले हैं। परमाणु समझौते के बाद ईरान पर से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे। इससे पहले इटली में भी ईरान के साथ अरबों डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जीका वायरस के बढ़ते संक्रमण से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति पर चर्चा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को जिनेवा में एक आपात बैठक बुलाई है। जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे शिशुओं को जन्म देती हैं जिनका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। ब्राजील में इससे जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष मार्गरेट चेन ने कहा है कि करीब 23 अमरीकी देशों में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। मार्गरेट चेन ने कहा कि मौसम के हालात को देखते हुए कई इलाकों में मच्छरों के बढ़ने की संभावना बनी हुई है। भारत की केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार होने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा कर दी है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद इन शहरों का चुनाव किया गया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी चुनने की प्रक्रिया में आम लोगों की सलाह को तरजीह दी गई है। जिन 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है उनमें भुवनेश्वर, पुणे, कोयम्बतूर, जयपुर, NDMC दिल्ली, बेलगांव, उदयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और लुधियाना शामिल हैं। स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा 3 शहर मध्य प्रदेश के हैं। वेंकैया नायडू ने इस बारे में जानकारी दी।
स्मार्ट सिटीज का चयन करने का प्रक्रिया पूरा हुआ है। पहले किस्ते में हम लोग 20 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप करने के लिए कैबिनेट ने तय किया और हमने पार्लियामेंट को भी बताया। पहले साल 20 होगा, अगला साल 40 होगा और तीसरा साल और 40 होगा।
वेंकैया नायडू के शब्द। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने कहा है कि ग्रीस आने वाले करीब 24 प्रवासी एजियन सागर में डूब गए हैं। ये प्रवासी तुर्की से ग्रीस के सैमोस द्वीप जा रहे थे। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा है कि 10 लोगों को जीवित निकाल लिया गया है और अन्य प्रवासियों को ढूंढा जा रहा है। बुधवार को भी एक नाव के डूबने से 7 प्रवासियों की मौत हो गई थी जिनमें 2 बच्चे शामिल थे। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी यूरोपीय देशों के साथ ईरान के व्यापारिक संबंधों को एक बार फिर से बहाल करने के मकसद से इटली के बाद फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने व्यापार संबंधी समझौते किए। इसमें फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी पोजो ईरान में कार का निर्माण करेगी। फ्रांस में एक व्यवसायियों को संबोधित करते हुए रूहानी ने फ्रांस और ईरान के संबंधों में एक नए अध्याय जुड़ने का स्वागत किया। रूहानी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से भी मुलाकात करेंगे। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं अमर शर्मा।
पेरिस पहुंचने पर फ्रांसीसी विदेश मंत्री लॉरेट फेबियन ने हसन रूहानी का स्वागत किया और उनके सम्मान में फ्रेंच मिलिट्री बैंड ने ईरानी राष्ट्रीय गान बजाया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि करीब 2 दशकों बाद पहली बार किसी ईरानी राष्ट्रपति ने इटली और फ्रांस का दौरा किया है। ईरान पर अमेरिका के हालिया हटाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूहानी की इस यात्रा का मकसद यूरोप के साथ नए व्यापार संबंधों को बहाल कर ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती प्रदान करना है, जिसमें फ्रांस की हवाई जहाज निर्माता कंपनी एयरबस से 100 हवाई जहाज खरीदना शामिल है। ईरान के कार निर्माता कंपनी पेजों से ईरान में कार बनाने को लेकर करीब 43 करोड़ 60 लाख डॉलर का समझौता किया है। इसके अलावा वो फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के मालिक से भी मिलेंगे। पेरिस में एक व्यापार मंच को संबोधित कर रूहानी ने कहा,
हम यहाँ फ्रांस के साथ अर्थव्यवस्था पर बात करने और अपने संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जुटे हैं। ईरान की मौजूदा राजनीति को देखते हुए हम फ्रांस के साथ पहले से ज्यादा ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहते हैं। इस दौरे पर मैं ऐलान करता हूँ कि इसके लिए हम तैयार हैं। मैं सभी निवेशकों और आर्थिक निकायों के लिए ये संदेश लाया हूँ कि ईरान में उनका स्वागत है।
हसन रूहानी के शब्द। इसी कार्यक्रम में मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल वाल्स ने कहा कि उनके महान राष्ट्र ने फ्रांस को लुभाया है।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी फ्रांस यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस में इस पहले फ्रांसीसी ईरानी व्यापार मंच में आपकी मौजूदगी से फ्रांस और ईरान एक बार फिर से एकजुट हुए हैं। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर एकजुट हुए हैं। एक लंबे समय के बाद फ्रांस ने ईरान की तरफ देखना शुरू किया है। इस महान देश ने हमें लुभा लिया है क्योंकि हम इसके इतिहास से मुग्ध हैं, इसकी संस्कृति से आकर्षित हैं। इसकी बराबरी कोई दूसरा देश नहीं कर सकता।
मैनुअल वाल्स के शब्द। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बाद इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाया गया है। रूहानी ने कहा कि ये प्रतिबंध ईरान और फ्रांस दोनों के लिए नुकसानदेह थे।
बीते दो दशकों में संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस के साथ हमारे अच्छे अनुभव रहे हैं। इसकी शुरुआत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से शुरू हुई थी। इसके बाद अर्थव्यवस्था, निर्माण और कृषि के क्षेत्र में हमारे संबंध बढ़े और इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब किसी की जीत नहीं हुई। खराब राजनीति और प्रतिबंधों की संभावना के कारण फ्रांस की जीत नहीं हुई और ईरान भी हारा। इतिहास में ऐसा कभी सफल नहीं हो पाया और दोनों पक्षों को इससे नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ बातचीत, समझौते, तर्क और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा ही हम दोनों का फायदा हो सकता है।
हसन रूहानी के शब्द। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इस संदेह में लगाए गए थे कि वो परमाणु हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA की इस बात की पुष्टि के बाद कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को धीमा करने का वादा किया है, उसके बाद उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया।
हसन रूहानी के फ्रांस दौरे पर ये थे अमर शर्मा।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब रुख करते हैं भारत का। केरल में जांच आयोग और निगरानी कोर्ट के विशेष जज ने राज्य के मुख्यमंत्री उमान चांडी और ऊर्जा मंत्री आर्यदन मोहम्मद के खिलाफ सोलार घोटाले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मल्लापुरम में मीडिया को एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी किया जिसमें लिखा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस मामले में मुख्यमंत्री पर घूस लेने के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए आयोग का गठन किया था। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ सौर ऊर्जा घोटाले में भ्रष्टाचार के इल्जाम पहले भी लगे हैं, लेकिन अब विजिलेंस कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है तो मामला बहुत ही गंभीर बन जाता है, खासकर जब विधानसभा के चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर हैं और कुछ ही हफ्तों पहले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने पंचायत चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। CPM के वरिष्ठ नेता MA Baby कहते हैं, आज जो बात विजिलेंस कोर्ट ने कही है उसकी जानकारी केरला की जनता को पहले से ही थी। इसी कोर्ट द्वारा कुछ हफ्ते पहले बार भ्रष्टाचार घोटाले मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश देने के बाद एक्साइज मिनिस्ट्री के बाबू को इस्तीफा देना पड़ा। अब ओमन चांडी को भी वही करना चाहिए। दरअसल इस सरकार को ही जाना होगा। चांडी को तो कोई नैतिक हक नहीं है मुख्यमंत्री पद पर रहने की। ये थे MA Baby के शब्द। दरअसल सौर ऊर्जा घोटाले की कहानी 2.5 साल पुरानी है जब सरिता नायर और उनके साथी बीजो राधाकृष्णन के खिलाफ व्यापारियों ने धोखे के 33 शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। सरिता और बीजो व्यापारियों को यह कहकर धोखा दे रहे थे कि विंडमिल प्रोजेक्ट्स में उनको साझेदारी मिलेगी। जांच में पुलिस को पता चला कि सरिता हर किसी से संपर्क रखती थी और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 अधिकारियों के नाम आने लगे। मुख्यमंत्री ने आरोप के बाद उन तीनों को कार्यालय से निकाल दिया। उसके बाद सरिता ने सीधे मुख्यमंत्री और उनके ऊर्जा मंत्री आर्यन मोहम्मद के खिलाफ ही इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपये रिश्वत चांडी को ही दिया था। चांडी ने इन सभी इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है। अब जब विजिलेंस कोर्ट का निर्णय आया तो मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। हम इस भरोसे से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। ये थे उमन चांडी के शब्द। भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम चांडी के सरकार के खिलाफ बहुत सारे आए हैं। पिछले थोड़े महीनों में उनके 2 वरिष्ठ मंत्री के एम मनी और के बाबू को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इसी विजिलेंस कोर्ट ने FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने बार के मालिकों से रिश्वत ली थी, ये कहते हुए कि राज्य में प्रोहिबिशन नहीं लागू होगा। तो क्या इन भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों ने कांग्रेस की UDF सरकार की विश्वसनीयता को धक्का लगा है? और क्या कांग्रेस हाईकमान चांडी को मुख्यमंत्री के पद से निकालेगी? हमने यह सवाल केरला के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक MG राधाकृष्णन से पूछा। उन्होंने कहा, चांडी तो उत्तरजीवी हैं, उनके सरकार के खिलाफ बहुत सारी इल्जामें लगी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस आला कमान पर निर्भर करता है। हालांकि CPM के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या LDF थोड़ा आगे लग रही है, उसकी मुश्किल ये है कि BJP ने भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन केरला में अल्पसंख्यकों बड़े पैमाने पर हैं और ओमन चांडी एक बहुत बड़े नेता हैं। तो हमें यह नहीं लगता कि चांडी को आला कमान हटाएगी जब चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर हैं। ये थे MG राधाकृष्णन के शब्द। जैसे राधाकृष्णन ने कहा, चांडी बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में बचे हैं। कभी कभी चांडी जैसे नेता चुनाव के अवसर पर भी बच जाते हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुलझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किया था। इस पर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम वापस ले लिया। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए लखनऊ फोन कर समीर आत्मज मिश्र से पूरी जानकारी मांगी।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का मामला ये पिछले 1.5 साल से चल रहा था और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही किसी नाम पर विचार बनता है और 4-5 नामों की लिस्ट दी जाती है जिसमें से किसी एक का चुनाव करती है सरकार, उसके नाम पर अपनी स्वीकृति देती है। लेकिन ये बार बार सरकार और नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बीच में जब सहमति नहीं बन पा रही थी, मामला कोर्ट में गया, कई तरह के इसमें विवाद उभर करके आए आखिरकार। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुनवाई की थी तो इसमें सरकार को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी, सरकार को आड़े हाथों लिया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार ने नाम दिए थे, राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह उनको हटाते हुए, उनके नाम को खारिज करते हुए जस्टिस संजय मिश्रा के नाम को स्वीकृति दी और कहा कि आप इनको लोकायुक्त बनाइए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वीरेंद्र सिंह जो है लोकायुक्त बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और उसके कुछ ही महीनों बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खारिज करते हुए अब नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। ये विवाद हुआ क्यों?
ये विवाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो 16 दिसंबर को जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कर दिया और उनको शपथ लेना था 1-2 दिन के बाद, लेकिन तभी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई और कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने धोखे में रखा है और इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी स्वीकृति है, नेता प्रतिपक्ष की भी स्वीकृति है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति इसमें नहीं है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जस्टिस राजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की, उन्होंने जब इसको पूरी तरह से इस पर सुनवाई की तो उनको ये लगा कि नहीं, इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति नहीं थी और इस मामले पर काफी नाराजगी भी दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने, और इस वजह से जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम को उन्होंने खारिज कर दिया और नया नाम लोकायुक्त के लिए नया नाम उन्होंने अपना बढ़ाया और कहा कि जस्टिस संजय मिश्रा की नियुक्ति की है।
तो अब संजय मिश्रा जो हैं वो नए लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, इनके बारे में कुछ बताइए, ये कौन हैं?
जस्टिस संजय मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने दिए हैं जिसमें राज्य के जो टीईटी छात्र हैं, बीएड और टीईटी के छात्र, उनसे जुड़े हुए कुछ मामले थे जिसमें इन्होंने सरकार की काफी खिंचाई की थी, सरकार को आड़े हाथों लिया था, सरकार के विरोध में फैसला दिया था। उसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे संबंधित फैसले जस्टिस संजय मिश्रा ने दिए हैं और माना यह जाता है कि काफी निर्विवाद इनका कार्यकाल रहा है। और जो 5 नामों की सूची दी थी सरकार ने लोकायुक्त के नाम पर विचार करने के लिए, उसमें भी जस्टिस संजय मिश्रा का नाम है, तो इसलिए फिर उच्चतम न्यायालय ने इनको नए लोकायुक्त के लिए इनके नाम को स्वीकृति दी है अपनी।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय मिश्रा को बनाया उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त, ये थे समीर आत्मज मिश्र।
दिन भर शॉर्ट वेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले 22 दिन से राज्यपाल शासन लगा है और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी पार्टी पीडीपी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखना चाहती है या नए सिरे से चुनावों को की तैयारी करना चाहती है। राज्य में इस मुद्दे पर लोगों की भी अलग अलग राय है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
हालांकि अभी तक पीडीपी ने बीजेपी के समर्थन से सरकार को दोबारा गठित करने का कोई संकेत नहीं दिया है, मुफ्ती सईद की सुपुत्री और इनकी उत्तराधिकारी महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में पार्टी को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने पार्टी की कई बैठकों को संबोधित करते हुए बताया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ जिन शर्तों पर गठबंधन सरकार बनाई थी, इन शर्तों का मान रखने के लिए बीजेपी के साथ नए सिरे से बातचीत करेंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो कुछ ही दिनों में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह से भी भेंटवार्ता करने वाली हैं। लेकिन ये सवाल घाटी में गश्त कर रहा है कि आखिर वो चाहती क्या, यही प्रश्न मैंने पूछा पत्रकार और विश्लेषक शेख कयूम से।
वो सोच रही है कि हुकूमत लेती है तो क्या वो डिलीवर कर सकेंगी, हुकूमत नहीं लेती है तो क्या वो यहाँ पे अगर नए चुनाव होते हैं तो क्या पार्टी उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकती है, ये एक मेन वजह है, रीजन है जो यहाँ पे हुकूमत साजी अभी नहीं हो रही है।
मिस्टर कयूम कहते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन महबूबा के लिए एक तीखी गोली है जिसे इन्हें हर हाल में निगलना पड़ेगा। इस बीच अपोजिशन ने भी महबूबा पर सीधा निशाना बांधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि महबूबा दोगली बातें करके लोगों को गुमराह कर रही हैं।
इन लोगों का मुझे समझ नहीं आता, कहते अलायंस है, अलायंस टूटा नहीं, आज भी बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस है वो मौजूद है, दोनों जबानों में बात करते हैं। पहले कहते हैं कि ये एजेंडा जो है ये ठीक नहीं है, इसको हम बदल देंगे, दूसरे दिन कहते हैं ये एजेंडा जो है ये मुकद्दस है और इसको हम आगे चलाएंगे। अगर इसको आगे चलाना है खुदा के लिए आप हुकूमत बनाइए महबूबा जी।
राज्य में इस राजनीतिक अस्थिरता के बारे में आम लोग भी अलग अलग विचार रखते हैं।
गवर्नमेंट बनने से या न बनने से कश्मीरियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कश्मीरी पिछले 50 सालों से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो वो आज भी कर रहे हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट बने या न बने यहाँ कोई फायदा नहीं पड़ रहा है लोगों को।
फ्लड विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन वो तो अभी बैठा है, उस पर कोई मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है उस मसले पर। दूसरा यह है कि मतलब जो भी अगर बहुत सारी पॉलिसीज है मतलब जो तब पॉसिबल हो सकती है जब यहाँ पे मिनिस्टर्स होंगे।
एक हिसाब से अगर देखे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन जो कश्मीर में करप्शन का एक बोलबाला रहा है उसकी वजह से हमें लगता है कि गवर्नर रूल ही अच्छा है, क्योंकि फाइलें बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, लोगों का जो मसाइल है उनका इजाला भी बहुत जल्दी होता है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में चुनाव के बाद महबूबा की पीडीपी को कश्मीर से सबसे ज्यादा यानी 28 सीटें मिली थीं और जम्मू में भाजपा को 25 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। भाजपा एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है और पीडीपी कश्मीर में नरम सुरों वाली अलगाववादी वाली पार्टी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने अढ़ाई महीने तक चली बातचीत के बाद गठबंधन सरकार बनाई। अब पीडीपी का कहना है कि जिस समझौते के अनुसार सरकार बनी थी इसको शीघ्र ही लागू करना होगा। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब कार्यक्रम में समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं,
मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी जी हाँ, पिछले बृहस्पतिवार की तरह स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं।
पहली चिट्ठी बहुत लंबी चिट्ठी जैसा कि आप देख रहे हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की है। इन्होंने रजिस्ट्री करके हमें चिट्ठी भेजी है, कैथनपुरवा अमेठी से लिखते हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं कुछ चुनिंदा बातें ही पढ़ सकती हूँ राजेश जी इसमें से। जैसे कि ये कहते हैं कि टेलीविजन पर तरह तरह के रियल नाटक आते हैं लेकिन उसमें गरीबों, दलितों और विकलांगों के बारे में स्टोरीज नहीं की जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि हम विकलांग हैं पर स्नातक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकलांगों को नाम दिया है दिव्यांग, लेकिन उनको भोजन और रोजगार का अधिकार चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। दिव्यांग कहने से क्या हासिल होगा।
जी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दूसरे श्रोताओं को बता दूं कि जैसे ही हमारा कार्यक्रम खत्म होता है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का SMS हमारे पास आ जाता है और एकदम वो रिव्यू करते हैं कार्यक्रम का, समीक्षा करते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगों के लिए दिव्यांग नाम दिया है। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया है नाम, लेकिन बहुत सारे लोगों को नापसंद भी है। लेकिन आपने ये जो बात कही है कि वाकई सबको रोजी रोटी चाहिए, नाम से क्या होगा, इस बात में वाकई दम है। आप सुनते रहें कार्यक्रम, हम आपकी आवाज़ को अपने कार्यक्रमों के जरिए प्रसारित करते रहेंगे, इतना हम कर सकते हैं और इसी का भरोसा दिला सकते हैं।
मंटू कुमार ने मोतिहारी बिहार से हमें ईमेल लिखकर भेजा है और उन्होंने तारीफ की है फैला उजियारा की। इनका कहना है कि हिंदी माध्यम से जो छात्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्रृंखला काफी लाभदायक
रही है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें इस बात का एहसास है कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहते हैं छात्र छात्राएं वो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम IAS बने तो BBC हिंदी सुन के।
इसके अलावा इन्होंने विनीत खरे की त्वचा दान और नीरज सिन्हा की पुरुष नसबंदी पर रिपोर्ट की तारीफ की है। इसके अलावा उन्होंने वसतुल्लाह खां की जो डायरी थी बकरी उपमहाद्वीप जाते जाते औरत बन गई उसकी तारीफ की है। ये कह रहे हैं कि फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने सफर के 100 साल पूरे करेगा, इस पर विशेष प्रस्तुति का इंतजार रहेगा जिसकी उम्मीद BBC से ही की जा सकती
से ही है उम्मीद, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस उम्मीद पर हम खरे उतरें।
कुछ तारीफ नजर आ रही है निखिल रंजन द्वारा प्रस्तुत अरब बसंत के 5 वर्ष पूरे होने पर जो अरब स्प्रिंग
जी हाँ,
उसकी
बिल्कुल।
बात ये कह रहे हैं। रफीक इब्राहिम पार्कर का रत्नागिरी महाराष्ट्र से ईमेल है, कहते हैं कि जिस अंदाज और शब्दों के चयन के साथ पेश किया गया वो बहुत अच्छा था। साथ ही कहते हैं कि इंडिया बोर्ड में मेरा फोन नहीं लग रहा है, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, आपकी हम इसमें मदद कर सकते हैं। आपको अगर कार्यक्रम में शामिल होना हो तो आप हमें एक ईमेल लिख दीजिए, अपने विचार उस ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए और फोन की कोशिश कीजिए, अगर लग जाएगा तो बहुत बेहतर होगा।
एक और ईमेल अजय कुमार कैथावली का बलिया उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि BBC का दिन भर कार्यक्रम सुन रहा था। शिकायत यह है कि इस कार्यक्रम में शुरू में प्रसारण किया गया कि भारत अपना 66वां गणतंत्र दिवस मना रहा है जो कि गलत था। थोड़ी देर बाद दोबारा ये बताया गया कि भारत अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है जो कि सही था।
अजय कुमार जी ने जिस तरह से लिखा है उससे एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे श्रोता इतने सजग, इतने बारीक श्रोता हैं, हमको बहुत गंभीरता से लेते हैं और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, तो आपने बहुत गौर से सुना और तथ्यात्मक भूल की ओर हमारा ध्यान खींचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
केशव कुमार का गंगटोक सिक्किम से ये ईमेल है, कहते हैं कि शनिवार का इंडिया बोल कार्यक्रम सुना, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने चुना, ये आपकी श्रेष्ठ व उत्कृष्ट सोच का उदाहरण है। लेकिन आपने कार्यक्रम में कुल 7 श्रोताओं का कॉल लिया जिसमें से प्रथम 4 तो मुद्दे से भटकाने वाले लोग लग रहे थे, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि उनका मंतव्य सिर्फ संघ की आलोचना करना था जिसको BBC ने एक मंच प्रदान किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम एक विशेष वर्ग जो संघ का कट्टर विरोधी है बनाम संघ हो गया, जबकि आपका विषय संघ और दलित के संबंधों पर था जहां दलित पूरी तरह से गौण लगे।
अपना अपना नजरिया है भाई, आप हमने तो कोशिश की कि ये पूरी बात, पूरा विचार सबके सामने आए और बहुत ही बैलेंस तरीके से आए, और जैसा कि हमको फीडबैक मिला है हमसे कहा गया कि कार्यक्रम बहुत ही बैलेंस था और हर विचार को बराबर तरीके से उसमें मौका दिया गया। लेकिन केशव कुमार जी गंगटोक से आपने ये चिट्ठी लिखी है, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अपने विचार प्रकट किए। थोड़ा सा कुछ और भी आगे लिखा है।
ये कहते हैं कि दुख की बात ये भी है कि एक भी कॉल किसी दलित का नहीं था।
नहीं, ये तो फिर हम तो किसी से न तो पूछते हैं कि आप दलित हैं या किस जाति के हैं, और ये पूछना भी नहीं चाहिए। हमें तो नहीं मालूम कि कौन दलित था उसमें या कौन दलित नहीं था। हाँ, हमारे लिए हर श्रोता बराबर है। मुझे लगता है कि आज भी मैंने
ज्यादा वक्त
बहुत वक्त ले लिया, इसलिए अब मैं माफी चाहूंगा और पता बता के नमस्कार कहेंगे। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश जोशी और स्वाति बख्शी। और अब बात खेलों की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को 4 सेटों के मैच में 6-1, 6-2, 3-6 और 6-3 से मात दी है। खेल समाचारों के साथ स्वाति बख्शी।
खेल समाचारों में आज सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले की, जहां पहली वरीयता वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरी वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को मात देकर 6th बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में कदम रख लिया है। इस हाई प्रोफाइल मैच के महज 22 मिनट के अंदर जोकोविच ने पहला सेट अपने खाते में कर लिया। पहले 2 सेट ने नोवाक जोकोविच की जीत की नींव तैयार कर दी। हालांकि फेडरर ने तीसरे सेट में वापसी की, लेकिन जोकोविच के खेल का कोई तोड़ आज फेडरर के पास नहीं था और मुकाबला 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 से नोवाक जोकोविच के नाम रहा। जीत के बाद जोकोविच ने कहा,
मैंने पहले 2 सेट में अविश्वसनीय खेल दिखाया। उसकी जरूरत थी क्योंकि रॉजर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं जानता था कि उनका खेल आक्रामक होगा। इस बात पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ खेल सकते हैं। आपका भरोसा आपके संदेह से ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
पुरुषों का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल ब्रिटेन के एंडी मरे और कनाडा के मिलोस राउनिक के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डॉडिच की टॉप सीड जोड़ी ने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और भारत के लियांडर पेस की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मात दे दी। हिंगिस पेस की जोड़ी पिछले साल की विजेता जोड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि सानिया और हिंगिस की जोड़ी महिला डबल्स फाइनल में कल अपना मैच खेलेगी, लेकिन मिक्स डबल्स में आज इन्हें एक दूसरे के खिलाफ उतरना था। अमेरिका की सीरीना विलियम्स महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई हैं। 6 बार की चैंपियन सीरीना ने सेमीफाइनल में पोलैंड की अग्नियास्का रडवांस्का को सीधे सेटों में 6-0, 6-4 से हरा दिया। अब फाइनल में उनका मुकाबला जर्मनी की एंजेली कैबर से होगा। जीत के बाद खुशी से लबरेज सीरीना ने कहा,
मैं एक और फाइनल में कदम रखते हुए बहुत उत्साहित हूँ। मेरा दिमाग ये सोचकर हैरान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं फाइनल में पहुँच चुकी हूँ।
महिलाओं के ही दूसरे सेमीफाइनल में कैबर ने ब्रिटेन की योहाना कोंटा को 7-5, 6-2 से हराया। कोंटा 33 सालों में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल मुकाबले तक पहुंचने वाली ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। और चलते चलते बात क्रिकेट की। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज खेले गए ग्रुप डी के एक मैच में भारत का मुकाबला आयरलैंड से हुआ। भारत ने ये मैच 79 रन से जीत लिया। भारत ने आयरलैंड के सामने 268 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन आयरलैंड की पूरी टीम 49.1 ओवर में 189 के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत के लिए 74 रन जोड़ने वाले सरफराज खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
खेल समाचार सुना रही थी स्वाति बख्शी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ईरान और फ्रांस के बीच नए सिरे से शुरू हो रहे आर्थिक संबंध को ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने नया अध्याय बताया। फ्रांस की विमान कंपनी एयरबस और कार कंपनी पोजो के साथ ईरान का समझौता जीका वायरस के बढ़ते संक्रमण से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति पर चर्चा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को जिनेवा में एक आपात बैठक बुलाई है। जीका वायरस के सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में सामने आए हैं। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार होने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा कर दी है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद इन शहरों का चुनाव किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन देने वालों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र और एक शपथ पत्र देकर 1 हफ्ते में ही पासपोर्ट मिल जाएगा। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने कहा है कि करीब 24 प्रवासी एजियन सागर में डूब गए हैं। ये प्रवासी तुर्की से ग्रीस के सैमोस द्वीप जा रहे थे, इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार को भी एक नाव के डूबने से 7 प्रवासियों की मौत हो गई थी। डेनमार्क के सत्तारूढ़ गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने गैर कानूनी तौर पर ग्रीस आने वाले प्रवासियों को वापस तुर्की भेजने का प्रस्ताव रखा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। घटना चक्र में जीका वायरस के निपटने के लिए WHO ने बनाई आपातकालीन टीम, इस पर करेंगे चर्चा। तो मिलते हैं आपसे घटना चक्र में 9:30 बजे।